अगली सुबह शिवी उठी। उसने उठते ही अपना मोबाइल चेक किया तो उसे ऑफिस की तरफ से एक मेल आया हुआ था, जिसमें उसे अगले 2 हफ्तों की छुट्टी मिलने की बात लिखी थी। उसे देखने के बाद शिवी के चेहरे पर लंबी स्माइल थी। उसने आर्या के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा।
आई लव टू, थैंक यू ऑल्सो। अयो, तुम इतना प्यार भी मत जताओ कि मुझे अपनी शादी पोस्टपोन करने के डिसीजन पर रिग्रेट हो।
लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद शिवी को आज ऑफिस नहीं जाना था। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और कुछ देर बाहर आई। ब्रेकफास्ट टेबल पर नील और नितारा उसका वेट कर रहे थे। उसे कैजुअल्स में नितारा ने पूछा, क्या आज ऑफिस बंक करके दोनों का आउटिंग करने का प्लान है क्या?
हाँ, अब तो इन दोनों का यही लगा रहना है, नील ने आंखें घुमाकर जवाब दिया।
जी नहीं, शिवी बोली, मैं इंडिया जा रही हूँ, डैड की हियरिंग है, आई कांट मिस दिस।
वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इंडिया जा रही हो, आर्या को इस बारे में पता है? क्या तुमने उसे अपने पापा के बारे में बताया? और तुम्हारी मॉम, उन्हें पता भी है या नहीं?
नील ने शिवी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी।
आर्या को मैंने क्लियरली कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। जब वो बेगुनाह प्रूव हो जाएंगे तब मैं उसे सब बता दूंगी। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जज नहीं करेगा और मेरी बात को आराम से समझेगा भी, शिवी ने जवाब दिया।
ठीक है, आर्या को एक बार के लिए साइड कर दो, उनसे ज्यादा जरूरी नंदिनी आंटी हैं, उन्हें पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी, नितारा ने परेशान स्वर में कहा।
हाँ, सिद्धांत ने मुझे बहुत टाइम पहले ही मैसेज कर दिया था, शायद उस टाइम मम्मा घर पर आई हुई थी और उन्होंने वो मैसेज देख लिया होगा, तभी वो जानबूझकर हम दोनों की शादी जल्दबाजी में करवाना चाहती थी, मुझे बस उन्हीं की टेंशन है।
शिवी को परेशान देखकर नितारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, डोंट वरी शिवी, वील हैंडल एवरीथिंग, तुम आराम से जाओ, यहाँ हम दोनों संभाल लेंगे।
नितारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम नंदिनी आंटी को कभी पता ही नहीं चलने देंगे कि तुम यहाँ नहीं रह रही, नील ने भी उसकी बात पर हामी भरी।
हाँ,
तुम दोनों कितने अच्छे हो, शिवी ने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया।
हम तो अच्छे हैं लेकिन तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझसे आर्या के बारे में ना बताकर अच्छा नहीं किया, आगे से ऐसा मत करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम सीधा मुझे कॉल करोगी, एंड वन मोर थिंग, आगे से तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी, नील ने गंभीर होकर कहा।
शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। नितारा उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, उसने बातों बातों में शिवी से पूछा, अच्छा तो फिर तुम कब जा रही हो इंडिया?
मेरा बस चले तो आज ही चली जाऊं, पहले मुझे फ़्लाइट बुक करवानी होगी, देखती हूँ कल तक फ़्लाइट बुक हो जाए तो वहाँ जा सकूँ, शिवी ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया।
बस इतनी सी बात, तुम्हें आज जाना है तो तुम आज ही जाओगी, रुको पहले तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट बुक की जाए।
नील उठकर अपना लैपटॉप लेकर आया, उसने इमरजेंसी फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की तो उसमें टिकट के अमाउंट डबल दिखा रहे थे। उन्हें देखने के बाद शिवी ने कहा, हद हो गई यार इनकी, सीधे डबल पैसे ले रहे हैं, मैं कल ही चली जाऊंगी, एक दिन और यहाँ रह लूंगी तो क्या हो जाएगा।
तुम कितना ज़्यादा सोचती हो, तुमने कभी डैड के पैसे यूज़ नहीं किए, तुम्हारी मॉम भी वहाँ काम करती हैं, इतना मत सोचा करो, नील ने जवाब दिया। उसने शिवी की इमरजेंसी टिकट बुक करवा दी जो लगभग 4 घंटे बाद की थी।
चलो मुझे ऑफिस निकलना होगा, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे या सिद्धांत से पूछ लेना, और हाँ अपनी पैकिंग कर लेना, काफ़ी टाइम है, चाहो तो शॉपिंग के लिए भी जा सकती हो, इंडिया में तो इस टाइम समर्स होंगे ना। जाने से पहले नितारा ने उसे सारे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। उसने नील और शिवी को बाय बोला और वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही नील ने शिवी से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, चाहे आर्या कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो लेकिन तुम यहाँ आने के बाद उसे सब सच बताओगी।
हाँ, पापा की इनोसेंट प्रूव होते ही मैं, शिवी बोल रही थी, तभी नील ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, ज़रूरी नहीं कि वो इनोसेंट प्रूव हो, जीत की तैयारी करना अच्छी बात है पर हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जैसा कि तुमने कहा वो बहुत समझदार है, तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम उसे सब बता सकती हो। शिवी ने उसकी बात पर हामी सिर हिलाया, वो जो भी कह रहा था वो सच था। शिवी को सब समझाने के बाद नील अपने ऑफिस चला गया तो वहीं उसकी बातों ने शिवी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
ठीक है, फिर आने के बाद ही बताऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार मिल लेती हूँ, मुझे इतने दिन उसके बिना भी तो रहना है, शिवी ने खुद से कहा। वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। तैयार होने के बाद उसने आर्या को कॉल किया। आर्या उस समय किसी के साथ मीटिंग में था। शिवी का कॉल आता देख उसने कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, कहकर वो जल्दी से बाहर आया और शिवी का कॉल पिक किया।
क्या हुआ, एक दिन भी मेरे बिना रहना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, आर्या ने उसे परेशान करने के लिए कहा।
मेरी कुछ देर में फ्लाइट है आर्या, मैं इंडिया जा रही हूँ पापा के पास, शिवी ने बुझी आवाज में कहा। शिवी के इतने दिन दूर रहने की बात सुनकर आर्या का भी चेहरा उतर गया।
कोई बात नहीं, पापा से मिलने जा रही हो तो ऐसे मूड ऑफ मत रखो, बस कुछ दिनों की बात है, हमें तो साथ ही रहना है फिर।
शिवी ने हामी भरी, मुझे जाने से पहले तुमसे मिलना है।
ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, 1 घंटे बाद मिलते हैं, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ अपने लगेज के साथ आ जाना।
आर्या ने शिवी से बात करने के बाद तुरंत उसे एक जगह की लोकेशन भेजी और वापस मीटिंग में चला गया। शिवी ने अपना सामान पैक किया और आर्या की बताई लोकेशन पर जाने लगी। लोकेशन के साथ आर्या ने उसे एक कोड भी भेजा था।
ये मुझे ये पासकोड क्यों भेजा है, शिवी ने हैरानी से कहा। चलो खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर में शिवी आर्या की बताई लोकेशन पर थी। वो एक कैब से उतरी तो सामने एक बड़ा सा घर था। उसे वहां देखते ही वॉचमैन ने उसे सैल्यूट किया और घर का डोर ओपन किया। अंदर घर के एक तरफ पार्किंग एरिया बना था तो दूसरी तरफ गार्डन था। शिवी आगे गई तो घर का दूसरा मेन डोर था। आर्या ने उसे उस दरवाजे का ही पासकोड भेजा था। ये मुझे हर बार चौंका देता है, शिवी ने अपने मोबाइल में देखकर कोड डाले। दरवाजा खुलने पर वो अंदर गई तो उसका घर किसी भी मायने में ओबेरॉय मेंशन से कम नहीं था। वो बिल्कुल उसी की तरह था लेकिन उससे छोटा। शिवी आंखें फाड़े उसी को देख रही थी तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। कैसा लगा हमारा घर, आर्या ने उसे पीछे से हक कर रखा था। शिवी उसकी तरफ पलटी और अपने दोनों उसके कंधे पर रखे। अच्छा है, मुझे लगा हम पूरी फैमिली के साथ रहेंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे। खैर इस बात पर बहस नहीं करते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। आर्या ने शिवी का हाथ पकड़ रखा था और वो उससे पूरे घर में घुमा रहा था। उस घर में हर एक तरह की फैसिलिटी मौजूद थी, यहाँ तक कि एक एरिया ऑफिस के तौर पर भी बनाया गया था। पूरा घर देखने के बाद आखिर में आर्या उसे अपने रूम में लेकर गया। ये कमरा हूबहू ओबेरॉय मेंशन में उसके कमरे जैसा लग रहा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, शिवी ने उसे देखते ही कहा। हाँ अब तक वैसा ही है, तुम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो, आर्या ने जवाब दिया। शिवी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। तभी उसके फोन का अलार्म बजा। ये उसने एयरपोर्ट जाने के एक घंटे पहले का सेट किया था ताकि बिना जल्दबाजी के वहाँ आराम से पहुँचा जा सके। तुम्हारा जाने का टाइम हो गया होगा, आर्या ने कहा। उसने देखा शिवी के चेहरे पर उदासी थी। तुम इस उतरे हुए चेहरे के साथ अपने पापा से मिलने जाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे लंदन छोड़ते टाइम इतना दुख होगा। तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है, कहते हुए शिवी ने उसे गले लगा लिया। ये दो हफ्ते यूं चुटकी बजाकर निकल जाएंगे, इंजॉय करो, उसने शिवी की पीठ सहलाकर कहा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, अभी के लिए जाने दे रहा हूँ, आगे से ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो आर्या से अलग होकर जाने ही लगी थी कि उसने उसका हाथ पकड़कर फिर करीब खींच लिया। आर्या के होंठ शिवी के होठों पर थे, शिवी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। कुछ मिनटों में आर्या उससे दूर हुआ और कहा, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। आर्या शिवी के साथ एयरपोर्ट जा रहा था। शिवी आज पहली बार उसके इतने करीब आई थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। एयरपोर्ट आने पर आर्या ने हक करके उसे बाय बोला और वहाँ से चला गया। शिवी को आगे का रास्ता अकेले ही पार करना था। वो फ्लाइट में थी और खुद को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर रही थी। शिवी लगभग 9 घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर थी। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वो काफ़ी थकी हुई थी लेकिन उसे वहाँ आकर अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पहुँची तो सुबह के 8 बज रहे थे। वहाँ आने के बाद उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। शिवी एयरपोर्ट से बाहर निकली तो कैब्स की लंबी लाइन लगी थी। उसने एक कैब हायर की और ड्राइवर को एक जगह का रास्ता बता दिया। वो उसका पुराना घर था जो कि उसके पापा का घर था। वहाँ जाते टाइम शिवी की नज़र खिड़की के बाहर थी और वो पूरी देर बाहर देख रही थी। मुंबई का ट्रैफिक, वो बेमौसम बरसात और वहाँ रास्ते में स्ट्रीट फूड को देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। अब लग रहा है मैं अपने घर वापस लौट आई। ऐसा फील हो रहा है जैसे सालों बाद अपने घर जा रही हूँ, अपने खुद के घर। शिवी की आँखें नम थीं। उसकी बातें सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, लगता है काफ़ी टाइम बाद आई हो मैडम आप यहाँ पर। हाँ भैया, किसी वजह से बाहर रहना पड़ रहा था, यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। हाँ अपने देश की तो बात ही निराली है। चलिए आप यहाँ आई हैं तो इस बार अच्छे से एंजॉय करके जाना और अच्छी यादें लेकर अपने साथ जाना, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। कुछ ही देर में उसने शिवी को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया था। उसे किराया देने के बाद शिवी घर पर आगे खड़ी थी। उनका घर मुंबई से थोड़ा आगे के एरिया में बना था। वो घर किसी पुरानी हवेली की तरह डिज़ाइन किया हुआ था। शिवी के पास घर की चाबी थी। उसने घर का दरवाज़ा खोला तो आगे एक खुला आंगन था। वहाँ जंगली घास उगी थी और ज़्यादातर पेड़ पौधे सूख चुके थे। आगे जाने पर एक तरफ घर बना हुआ था तो दूसरी तरफ एक कमरा स्टोर रूम के तौर पर बना था। मेरा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है आर्या, पर यह मेरा घर है। यहाँ मेरा बचपन बीता है, यहीं से मैंने स्कूल कॉलेज के दिन देखे हैं। ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। देखना मैं एक दिन तुम्हें यहाँ लेकर ज़रूर आऊँगी। खुद से बातें करते हुए शिवी आगे गई। उसने आगे का दरवाज़ा खोला। लगभग 2 साल से वहाँ कोई नहीं आया था इसलिए वहाँ धूल मिट्टी जमी थी, जगह जगह पर मकड़ियों के जाले थे। हे भगवान, इसे कौन साफ करेगा, शिवी ने खांसते हुए कहा। बंदा आपकी सेवा में हाजिर है मैडम, पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई। शिवी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने सिद्धांत खड़ा था। वहाँ आने से पहले शिवी ने उसे मैसेज कर दिया था, वो घर के बाहर उसके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही शिवी वहाँ पहुँची, सिद्धांत तुरंत घर के अंदर आ गया।
उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने दौड़कर सिद्धांत को गले लगा लिया। चैप्टर पार्ट 2 आपको कैसा लगा पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा। शिवी इंडिया आ चुकी है और यहीं से कहानी का सेकेंड हाफ शुरू होता है। इन्जॉय रीडिंग।